आदित्य ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, क्योंकि अभी उसे अपने दुश्मनों से हिसाब लेना है, इसलिए मैं उसे वहीं छोड़कर आ गया। ये सुनकर दादाजी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन फिर बोले, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात हुई दिग्विजय से और उसने बताया कि वो हफ्ते 15 दिन तक वहीं रहेंगे। और तुम्हें एक और बात बतानी थी, तुम्हारी मॉम सीधे मुंबई पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां पर जो तुमने नया प्रोजेक्ट बनाया है उसी के रिगार्डिंग काम चल रहा है, तो तुम्हें भी अब वहीं जाना होगा। हाँ, तुम्हारी मॉम एक दो दिन में वहां पहुंच जाएंगी, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ का काम निपटाकर वहां चले जाओ। और हो सकता है फिर वहीं पर ही, मैं तो कहता हूँ तुम झलक को अपनी मॉम से भी मिलवा देना और वहीं के वहीं तुम दोनों की शादी भी करवा देंगे। और मैं तो कहता हूँ उन दोनों नालायकों को भी ले जाओ, ये लोग यहाँ क्या करेंगे, हो सकता है तेरी कुछ मदद ही कर पाए। अब ये सुनकर कबीर का दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। अनामिका का ख्याल आते ही उसके दिल में अजीब से जज्बात पैदा हो गए थे। वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह दादाजी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, बहुत अच्छा कहा आपने। काम का काम हो जाएगा और घूमना फिरना भी, नए शहर में सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सुनकर दादाजी हल्के से मुस्कुरा दिए थे। फिलहाल इस वक्त झलक और अनामिका पार्टी करके सीधा अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। रात के 2 बज चुके थे। इस बीच झलक के चेहरे की मुस्कान बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी, वली अनामिका का गुस्से से बुरा हाल था। हालांकि उसका पार्टी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन झलक ने उसे मना लिया था कि अगर पार्टी में आए हैं तो बिना एंजॉय किए वापस नहीं जाएंगे। गाड़ी में बैठते ही अनामिका झुंझलाते हुए बोली, यार तुझे समझ में आता भी है कुछ? तुमने देखा नहीं उस सिद्धार्थ ने तुमसे किस तरह से बातें की, और इतनी सारी बातें होने के बाद भी वो आकांक्षा से शादी करने जा रहा है। कैन यू बिलीव दैट? ओ माई गॉड, सच कहूँ तो झलक, मुझे तो वो खुराना एक नंबर का उल्लू लगता है जिसमें अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। झलक उसकी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराई और बोली, शांत हो जाओ मेरी गदाधारी बहन, आखिर तुम इतना ज़्यादा क्यों भड़क रही हो? तुमने देखा नहीं, मैंने एक बार फिर से जीना सीख लिया है, और जब मैं जीना सीख चुकी हूँ तो इस बार मैं किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। झलक की बात सुनकर अनामिका पूरी तरह से खामोश हो गई। झलक की बातों में इस बार एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। घर के सभी लोग सो चुके थे, सिवाय आरफ के, जो चौकी पर बैठकर अपनी बेटियों के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उन्हें अच्छी तरह अंदाजा था कि सामने वाले लोग कितने ताकतवर हैं, इसलिए उन्हें चिंता हो रही थी कि कहीं उनकी बेटियों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। जैसे ही दोनों अंदर आईं, आरफ तुरंत उठकर उनके पास आए और झलक को गले लगाते हुए बोले, बेटा सब ठीक था ना? कोई मिला तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अनामिका कुछ कहना चाहती थी, खास तौर पर सिद्धार्थ के बारे में, बट झलक ने उसका हाथ पकड़कर हल्के से दबा दिया, मानो कह रही हो अभी कुछ मत बोलो। ये समझते ही अनामिका तुरंत संभल गई और बोली, अरे पापा आप क्यों परेशान हो जाते हैं, सब बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी आपकी बेटी कौन है ये बात आप अच्छी तरह जानते ही है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए। अब बहुत देर हो गई है, हम काफी थक गए हैं, सुबह आराम से बात करेंगे। झलक भी गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ और वैसे भी मुझे कल सुबह कुछ जरूरी काम से बाहर भी जाना है। ये सुनकर अनामिका मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगी, फिर दोनों अपने कमरे में आराम करने चली गईं। अनामिका तो काफी थक चुकी थी, इसलिए बेड पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई, लेकिन झलक की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। सिद्धार्थ का उसके करीब आना और इस तरह की उल्टी सीधी बातें करना, ये सब उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। वो कमरे में इधर उधर टहलते हुए सोचने लगी, मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, यू नो वॉट, मुझे सच में बहुत बुरा लगता है जब तुम सारी बातों को मानकर मेरे सामने आकर माफी मांगते। अच्छा ही हुआ कि तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, और वैसे भी तुम आकांक्षा को ही डिजर्व करते हो। ये सोचकर वो किसी तरह सोने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी ओर आर्यन अपने कमरे में खुद को बंद करके बैठा था। झलक का इस तरह बदला हुआ रूप देखकर वो अंदर ही अंदर घबरा गया था। वो खुद से ही सवाल करने लगा, आखिर मुझे उससे इतना डर क्यों लग रहा है? मैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री का सीईओ हूँ और वो तो सिर्फ एक लड़की है। फिर भी उसकी आवाज में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उसके चेहरे पर एक के बाद एक सवाल उभरते जा रहे थे और वो खुद ही अपने जवाब ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। रात के 3 बज चुके थे, लेकिन अब तो उसका दिल कहने लगा था कि अगर वो झलक से माफी नहीं मांगेगा, उससे माफी हासिल नहीं करेगा, तो शायद वो सही तरीके से सांस तक नहीं ले पाएगा। अपनी जिंदगी का सुकून वापस पाने के लिए उसे झलक से हर हाल में माफी मांगनी ही होगी। कहीं ना कहीं वो बार बार सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिलहाल इन्हीं उलझी हुई बातों के बीच सुबह हो चुकी थी। वहीं पूरी रात आकांक्षा उसी पार्टी वाले कपड़ों में बैठी रही थी। हालांकि उसे नींद भी बहुत आ रही थी और आखिरकार वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे ही वो सो गई थी। रणविजय ने एक नज़र आकांक्षा पर डाली थी। आकांक्षा की माँ नैना ओबेरॉय और साथ ही रणविजय की दादी उर्वशी खुराना उसी फ्लोर पर एडमिट थी। दोनों को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, इसलिए दोनों के रूम एक ही फ्लोर पर VIP लाउंज के पास ही थे। थकावट और नेचुरल कमजोरी की वजह से जैसे ही उसे झपकी आई, वो वहीं सो गई थी। ईशान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे उठाए या उसे कुछ कह सके। वो अपनी बेटी के पास ही बैठा रहा और पूरी रात रोते रोते गुजारती थी। वहीं रणविजय आकांक्षा के पास बैठा हुआ था। ना उसकी आंखों में नींद थी, ना ही उसे कोई थकावट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी अजीब जुनून में वहां बैठा हुआ हो। धीरे धीरे ईशान ओबेरॉय की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो एक बार रणविजय के पास जाकर बैठ सके या उससे बात कर सके। उसकी किसी से नजर मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो कभी अपनी बेटी को देखता तो कभी अपनी बेहोश पड़ी पत्नी को। इस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह से मिलीजुली भावनाओं से भरा हुआ था। फिलहाल आकांक्षा के सो जाने के बाद उसने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली और फिर सीधे अपनी पत्नी नैना ओबेरॉय के केबिन में जा पहुंचा। डॉक्टर उस वक्त ऑक्सीजन के जरिए उसे सांस दे रहे थे। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो उसका हाथ थामकर बैठ गया और धीमे स्वर में बोलने लगा, मैं जानता हूँ नैना, हालत बहुत खराब है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। तुम्हें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। उसके बाद उस लड़की को देखना मैं क्या करता हूँ। कहीं ना कहीं ईशान की आंखों में बदला लेने का पहले जैसा जुनून फिर से चमकने लगा था। वहीं रणविजय ने थोड़ी दूरी पर रखी डेस्क पर सोती हुई आकांक्षा की तरफ एक नजर डाली। अभी भी उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, जिसकी वजह से अस्पताल में काम करने वाले नाइट शिफ्ट के वार्ड बॉय वगैरह उसे अजीब नजरों से देखते हुए गुजर रहे थे। रणविजय ये सब देख चुका था, लेकिन अब उसे आकांक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो समझ चुका था कि अब आकांक्षा उसके किसी काम की नहीं रही। उसका बदला लेने का मकसद भी खत्म हो चुका था। कहां तो वो दादी का अच्छा पोता बनकर उनके करीब आया था, लेकिन अनामिका ने एक ही पल में उसे मीडिया के सामने जलील कर दिया था और उसके असली मकसद को सबके सामने खोल कर रख दिया था।
इतनी बेइज्जती के बाद अब रणविजय समझ चुका था कि आकांक्षा के सहारे वो सिद्धार्थ खुराना को तो क्या, अपनी दादी उर्वशी खुराना को भी अपने पक्ष में नहीं कर सकता। इसलिए अब वो उसके लिए किसी काम की नहीं थी, उसके लिए वो बस एक मोहरे के समान रह गई थी। फिलहाल अब एक नई सुबह हो चुकी थी। झलक पूरे जोश के साथ उठी, सबको मॉर्निंग विश किया और आज उसने खुद किचन संभाल लिया। उसने सबके लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म पराठे बनाए, चाय कॉफी तैयार की और सबके साथ बैठकर नाश्ता भी किया। अनामिका झलक के चेहरे की खुशी देखकर थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी। कम से कम झलक ने कल रात की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था, लेकिन फिर भी उसके मन में डर था, कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ खुराना की वजह से झलक का मूड फिर से खराब हो जाए और वो अपने पुराने खतरनाक रूप में लौट आए। लेकिन झलक को एक बार फिर से बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार करते देखकर अनामिका ने राहत की सांस ली। चलो कम से कम ये लड़की तो ठीक है। इन्हीं सब बातों के बीच कुछ नौकर अंदर आए। उनके हाथों में एक बड़ा सा फलों का टोकरा था। ये देखकर दादाजी के माथे पर बल पड़ गए। तभी स्नेहाजी बोली, अरे बेटा झलक, तुमने ये फ्रूट्स कब मंगवाए? मैं तो अभी अभी पास की मार्केट से ताज़े फल लेकर आई हूँ। दरअसल दादाजी ने स्नेहाजी को मना किया था कि वो बाहर ना जाएं, लेकिन उन्हें खुद अपनी आंखों से ताज़ी सब्जियां और फल खरीदना पसंद था, इसलिए वो पास की मार्केट से सब कुछ लेकर आ गई थीं। अब उनकी बात सुनकर झलक मुस्कुराई, उनके गले में हाथ डालकर उनके गाल पर किस किया और बोली, मॉम आप परेशान मत होइए, ये फ्रूट्स हमारे घर के लिए नहीं हैं, असल में हमारे कुछ दुश्मन बीमार हैं। क्या करेगी झलक, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।